अब वो खूबियां सुनेंगे कि किन चीजों के जरिए आपके दिल से ये चीजें निकल जाएंगी। अल्लज़ीन यकूलून, जो कहते हैं हमारे रब हम ईमान ला चुके इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमा बरदारी करने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले। ए अल्लाह हम सबको तहज्जुद गुजार कर दे, सहरियों में दुआएं मांगने वाला बना दे। अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो दिल के साथ दुनिया को कायम रखने वाला है, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस आयत का नंबर नोट कर लें, इल्म वालों की शान है। या अल्हम्दुलिल्लाह, नस पूरा हुआ पारे का आयत 18 पे बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरआन। आयत 19, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस में सरकशी और हसद की बिना पर इख्तलाफ किया, और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफर करे अल्लाह ताला इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे झगड़े तो आप कह दीजिए कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दिया है, और अहले किताब से और इन अनपढ़ लोगों से कह दीजिए क्या तुम अभी भी इताअत करते हो, बस अगर ये ताबेदार बन भी जाएं तो यकीनन हिदायत वाले हैं और अगर ये मुंह फेर लें तो आप पर सिर पहुंचा देना है और अल्लाह ताला बंदों को खूब देखभाल रहा है। जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफर करते हैं हर नबियों को नाहक कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, तो ऐ नबी ने दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए, इनके अमाल दुनिया और आखरत में गारत हैं और इनका कोई मददगार नहीं। कितनी बड़ी बड़ी धमकियां हैं। चलिए अमल के नुक्ते, जुयीना लिन्नास पे, कोई ऐसी महबूब चीज़ जो आपके दिल को भाती हो, यानी अपनी कोई पसंदीदा चीज़ सोचिए, उसको अपने से दूर कीजिए ताकि आपके नफ्स की तरबियत हो सके। फिर दूसरी बात, अपनी कोई हाजत अल्लाह से मांगिए, लेकिन दुआ करने से पहले कोई नेक अमल कर लीजिए, इस तरह आपकी दुआ कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद की जाती है। और तीसरी बात, आज रात को तहज्जुद के लिए उठिए चाहे 2 रकत ही सही, और उसमें वल मुस्तगफिरीन बिल असहार में अपना नाम शामिल कीजिए। कुरानी रहनुमाई अल्लाह ताला के लिए खाक सरी और तवाज़ु इख्तियार कीजिए। मन तवादा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, खाक सारी इख्तियार करता है, अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। आप इबादत और रियाजत के कितने ही आला ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, हकूकुल्लाह की अदायगी में कोताही नहीं करनी। इल्म लीजिए क्योंकि राह से खून फेल इल्म है और असल इल्म इल्म तौहीद है। शरई उलूम में सबसे ऊपर इल्म अल्लाह को एक मानने का इल्म है। कुरान पढ़ते हुए आपको तौहीद समझ आ जाए इससे बड़ा कोई और फायदा नहीं। फिर इसी तरह से अहले किताब को इल्म की कमी की बुनियाद पे नहीं पकड़ा गया, बल्कि जब उन्होंने इल्म आने के बाद भी एक दूसरे से हसद किया तो पकड़े गए। मा जाहुमुल इल्मु बग्यम बैनहुम, तो इल्म है अगर तो एक दूसरे से हसद से बचिए। गौर व फिक्र की चंद बातें, रात के आखिरी हिस्से यानी सहरी के औकात में मगफरत मांगने को खास किया गया क्योंकि एक तो उस वक़्त सुबह करीब होती है, इंसान रात को सो के फ्रेश हो चुका होता है, और इस वक्त दुआ की कबूलियत इसलिए होती है कि अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आ जाते हैं, बाहर की दुनिया में खामोशी होती है, दिल साफ सुथरा होता है और तबीयत में नशात होता है। साबरीना व सादिकीन वाली आयत पे अमल करते हुए अगर कोई आपको सताए तो अल्लाह के लिए उस पर सब्र करके अपना नाम साबिरात में रखिए। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि सलफ सालेहीन अपनी रातों को नमाज में गुजारते, फिर वक्ते सहर बैठकर इस्तिग़फ़ार करते, इस तरह वो क़ियामुल्लैल यानी तहज्जुद को इस्तिग़फ़ार के साथ ख़त्म करते, यानी आखिरी चीज़ जो होनी चाहिए तहज्जुद की वो अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हो। और इसी तरह से अल्लाह के बारे में मज़ीद सीखने के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के लिए और हदीस के लिए मज़ीद वक्त अता फरमाए। आप देख रहे हैं शाहिद अल्लाह में अल्लाह ताला ने उलमा का नाम फरिश्तों और अपनी गवाही के साथ लिया है। पूरे कुरान में अगर और कोई एक आयत भी ना होती तो इल्म की अहमियत पर यह आयत बहुत खूबसूरत थी। फिर इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम से गौर व फिक्र का नुक्ता क्या निकलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया, शौरी मुसलमान भी बना दे और फिरका वारियत से अल्लाह ताला हमें बचा ले। और इख्तलाफ कब आता है? जब बगी और सरकशी और हसद होता है, और जब उम्मत अमर बिल मारूफ का फरीजा छोड़ती है तो अल्लाह ताला उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, जैसा कि आज किसी हद तक हम मुसलमानों के साथ भी हो चुका है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे बेहतरीन काम ले। आगे है जी, बहुत प्यारी दुआएं भी हैं, 23 से 29, मरहूबात से कौन बचेगा। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया? वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी इनकी एक जमात मुंह फेर कर लौट जाती है। इनकी वजह इनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने दिन ही आग जलाएगी। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया, यानी खुशफहमियां। पहले पारे में भी ये तस्करा हुआ था। इनको कहो क्या फकीफा, बस क्या हाल होगा जब हमें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, और हर शख्स को अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा और इन पर जुल्म न किया जाएगा। आप कह दीजिए अल्लाह, ये दुआ याद भी करिए और साथ साथ मांगिएगा भी, आमीन कहिएगा। तर्जुमे में बड़ी प्यारी दुआ है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क की तूतिल मुल्क मन तशा। आप कह दीजिए अल्लाह है तमाम जहान के मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तो जिसे चाहे इज्जत बख्शे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक तो हर चीज पर कादिर है। तूलिजुल्लैल फिन्नहार, तू ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही है कि जिसे चाहता है बेशुमार रोजी देता है। अल्लाह हमारी भी दुआएं कबूल फरमा। कर्जों में डूबे हुए लोगों को ये दुआएं मांगने की जरूरत है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से किसी तरह से बचाव मकसूद हो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, देखिएगा दो दफा ये आयत आ रही है, और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। कह दीजिए कि ख्वाह तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, ख्वाह जाहिर करो, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब इसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। क्या पता चला कि उसकी नजर आपके मेरे दिल के ऊपर भी है? तो क्या पता चला, लिखिए। बियदिकल खैर का लफ्ज आया, इस पे अमल लिखिए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आप से खैर के काम ले ले, क्योंकि खैर उसी के हाथ में। दूसरी बात, इसमें अल्लाह के दुश्मनों के साथ दोस्ती की बात आई, तो एक पैगाम बनाइए और इसमें अल्लाह के दुश्मनों से दोस्ती के बारे में 3 जुमले लिखिए, और ऐसे लोगों से शेयर कीजिए जो मरहूब दिखते हैं आपको गैरों से। अगला अमल का नुक्ता लिखिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको इखलास से नवाजे, क्योंकि वो आपके दिल की बातों को भी जानता है। इन तुख्फू माफी सुदूरी कुम औ तुब्दूहू यालमहुल्लाह पे। कुरान की रहनुमाई देखिएगा, किसी मोमिन को किताब सुन्नत की तरफ बुलाया जाए और वो सिर्फ ख्वाहिशात नफ्स की वजह से इनकार कर दे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये पता चला, इससे अल्लाह की पनाह लेनी है। दीन में अपनी जानिब से कुछ दाखिल करना, बिदात करना, दीनी उमूर में बिला इल्म बात करना, ये सब अकीदे को बिगाड़ने वाली चीजें हैं, इससे बचना। रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, बंदे तो सिर्फ वसीला हैं, क्योंकि वतर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरी हिसाब। गौर व फिक्र की चंद बातें, जो कोई जानबूझकर हक का इनकार करे तो अल्लाह उससे इल्म छीन लेता है, क्योंकि अल्लाह ने यही बात बता दी, अलम तारा इल्लज़ीना उतु नसीबम मिनल किताब में से। फिर अगली बात नोट कीजिएगा कि हक की पैरवी करनी है चाहे उल्टे पाँव चलना पड़े। फिर आगे जो अल्लाह ताला की सिफत थी कि वो तुखरिजुल गय्या मिनल मय्या, और इस पे गौर व फिक्र करना है। अंडे में से चूजे के निकलने के अमल को जहन में लाते हुए दुआ करनी है, क्या एक छोटे से खौल में से एक जिंदा चूजे को निकालने वाले मुझे भी मुश्किलात के चुंगल से निकाल कर एक नई जिंदगी अता फरमा, बीमारियों से निकाल दे, दूसरी चीजों से निकाल दे, इससे बड़ी अल्लाह ताला की और क्या कुदरत होगी। शर से खैर निकालता है, तो अपने लिए भी दुआ करे कि अल्लाह शर से खैर निकाल दे और जो शर है उसको खैर में बदल दे। और फिर इसी तरह से अगली बात क्या है, दोस्ती के लिए मुसलमान और काफिर के बीच में अगर चॉइस हो तो मुसलमान को चूज करना है। मुसलमानों के स्टोर से ले लीजिए चाहे महंगा मिले, ताकि उसका फायदा मुसलमानों को जाए। इसी तरह मुजरिम के जुर्म से लाइलमी उसको सजा से नहीं बचाएगी, इसलिए कोशिश करनी है कि अगर कोई ऐसा जुर्म हो रहा है जो आप नहीं जानते तो उससे इल्म हासिल करके उसको छोड़ दीजिए। अब अगली आयात में फिर दोबारा हम सबको मुहासबे की दावत दी जा रही है। 30 से 37, माँ बाप की नेकियों का सिला औलाद को भी मिलता है। कैसे? जिस दिन हर नफ्स शख्स अपनी ही की हुई नेकियों को और अपनी ही की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा। 3 सेकंड गौर करें, क्या आप अपने गुनाहों को मिलने के लिए तैयार हैं क्यामत के दिन? और ऑफ कोर्स आप अपनी नेकियों से मिलने के लिए तो बेचैन होंगे। आरजू करेगा कि काश इसके और इसकी बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है। दूसरी बार आ गया ये जुमला, वजह हसी रुकुमुल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे अपना डर दे दे। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। आप देखिए कुरान कितना वाजे करके पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है, जब पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो लिखिए इत्तबाए रसूल के फवाइद, अल्लाह सुबहान तआला उनसे मोहब्बत करेगा और उनके गुनाहों को माफ कर देगा। आयत 33, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमाया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। अब यहाँ से सुनिए सूरत आल इमरान का नाम क्यों है। जब इमरान की बीवी ने कहा कि मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम पर आज़ाद करने की नज़र मानी, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी और मरियम की वालिदा हैं, हन्ना इनका नाम है, शोहर फौत हो चुके हैं, पेट के बच्चे को अल्लाह की नज़र करती हैं, इसको नज़र तबर्रो कहते हैं, नेकियों से भरी हुई नज़र। अल्लाह आज की माओ को भी तौफीक दे कि पेट के बच्चों को ही अल्लाह के रास्ते में डिवोट करने और खास करने की नीयत कर ले। इसे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। एक औरत की सबसे कीमती मता औलाद होती है, और खास तौर पर जब शोहर ना हो तो फिर औलाद और कीमती लगती है। लेकिन इस औरत ने पेट के बच्चे को अल्लाह की नजर डालकर साबित कर दिया कि उसको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है हर चीज की निस्बत। अब बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ, जब बच्ची को जना तो कहने लगी है परवरदिगार मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा, मैं इसे और इसकी औलाद को शैताने मर्दूद से तेरी पनाह में देती हूँ, बस इसे इसके परवरदिगार ने अच्छी तरह कबूल किया क्योंकि नीयत अच्छी थी और इसे बेहतरीन परवरिश दी। इसकी खैर खबर लेने वाले जकरिया अलैहिस्सलाम को बनाया, जब कभी जकरिया अलैहिस्सलाम इनके हुजरे में जाते, इनके पास रोजी रखी भी पाते, वो पूछते हैं मरियम ये रोजी तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजी दे। इसी जगह जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ मांगी। नोट करिए, जहाँ नेकी होती है वहां फौरन दुआ कर लेनी चाहिए, कबूलियत का वक्त होता है। क्या कहा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला। अमल का नुक्ता नोट करें कि अंबिया कराम को पता है कि दुआएं अल्लाह सुनते हैं। आज कोई होता तो बीबी मरियम का पल्लू पकड़ के कहता अब तू मेरे लिए दुआ कर। आज ये भी एक हमारी अजीब सी सोच हो गई है कि हम ये सोच लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआएं अल्लाह जरूर सुनता है। गलत है ये, किसी का उसके ऊपर जोर नहीं। तो आइए जरा अमल की बातें नोट करते हैं। चूँकि यौम तजिदु कुल्लु नफ्स मा अमिलत मिन खैर मुखदरा की बात हुई कि हर काम हाजिर किया जाएगा, कोई नेक अमल कीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दें, मोहताज की मदद करें, किसी का घर साफ कर दें, किसी का कपड़ा धो दें, और उसके बाद अल्लाह से कहिए कि क्यामत के दिन मुझे ये अमल दिखाना, क्योंकि यौम तजिदु वाली बात हुई। दूसरा अमल का नुक्ता, 3 असबाब तलाश कीजिए जो बंदे को अल्लाह की रहमत का हकदार बनाते हों, फिर इन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो आपको। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह पे। तीसरा अमल नोट कीजिए, अपने लिए, अपनी औलाद और सब घर वालों के लिए शैतान ने मरदूत से पनाह मांगी अल्लाह की, क्योंकि वइन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम। बीबी हन्ना की ये दुआ हमें सिखाती है कि बच्चों की नहीं, बच्चों के बच्चों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। कुरान की रहनुमाई देखते हैं, बुराइयों और इनकी जगहों से दूर रहिए इससे पहले कि आप इनकी चक्कर में फंस जाएं, क्योंकि वमा अमिलत मिन सुइन तवद्दु लव अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा की बात आई। अगली बात, नबी सल्लम की सुन्नतों की इत्तबा अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल का जरिया है। इस सोच के साथ किसी एक सुन्नत को जिंदा कीजिए, पारे के अंत पे आपको एक बड़ी प्यारी सुन्नत मिलने भी वाली है हर दिन की तरह। फिर अगली बात है कि औरत और मर्द की बहस में मत पड़े, इक्वालिटी, जेंडर, औरत ज्यादा अच्छी के मर्द है। अल्लाह ने वले इज़्ज़कर कल उनसा कहकर बात ही खत्म कर दी। मर्दों को मर्दों की जगह पे अच्छा कहो, औरतों को औरतों के कामों की जगह पे अच्छा करो। गौर व फिक्र की बातों में पहली बात यह है कि जो शख्स अपने हद से बढ़ जाए उसको याद कराइए, वयुहज़्जिरकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह का डर दिलाइए, दुनिया के डर से कोई नहीं डरता। फिर अगली बात जो अपने लिए नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला जो शफकत और रहमत फरमाते हैं और फिर हमें अपनी जात से डराते हैं, क्यों? ये भी उसकी रहमत है कि मेरी पकड़ के डर से ही नेकियों की तरफ आ जाओ और गुनाहों से बच जाओ। फिर इसके बाद अगली बात जो इसमें हमारे लिए अमल की बात आ रही है, अताते रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत और उनकी खुशी से बात को मानना, ये चीज़ भी हम सब को अपने लिए मालूम करनी चाहिए कि खुशी से नेकियां करने वाले को अजर मिलेगा। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अमल से कि ये तुम्हें रिस्क कहाँ से आया, और उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बग़ैरि हिसाब, तो इस पे ज़रा सा अपने लिए एक गौर कर लीजिए कि मैं रिस्क को किसकी तरफ से समझती हूँ, जॉब, कारोबार, बिजनेस या फलां। याद रखिए सब अल्लाह की तरफ से आता है। ये अलग बात है कि अल्लाह बंदों के दिलों में डाल देता है और उनके जरिए फिर आप तक पहुंच जाता है। आगे देखिए आयत 39, बस फरिश्तों ने इन्हें आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला आपको यहया की यकीनी खुशखबरी देता है, वो अल्लाह ताला के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार, नफ्स पे जब्त करने वाला और नबी है नेक लोगों में से। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे करता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया, निशानी ये है कि 3 दिन तक आप लोगों से बात न कर सकेंगे, सिर्फ इशारे से समझाएंगे। बस अपने रब का जिक्र कसरत से कीजिए और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान कीजिए। और जब फरिश्तों ने कहा है मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया, दुआ करें अल्लाह हमें भी चुन ले, और तुझे पाक कर दिया, दुआ करें अल्लाह हमें पाक कर दे, और सारे जहान की औरतों में से तेरा इंतखाब कर लिया, दुआ कीजिए अल्लाह हमें दीन के लिए मुंतखब फरमा ले। ऐ मरियम तुम अपने रब की इताअत करो और सजदा करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह फिर हमें अपना इताअत गुजार, सजदे करने और रुकू करने वाला बना दे। ऐ नबी, ये गैब की खबरों में से है जिसे हम आपकी तरफ वही से पहुंचाते हैं। आप इनके पास ना थे जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनसे कौन पालेगा, ना तो इनके झगड़े के वक्त आप पास थे। जब फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम अल्लाह तुझे एक अपने कलमे की खुशखबरी देता है, आपको यहाँ हिस्टोरिकल फीलिंग आ रही है कैसे एक कुंवारी बच्ची को बेटे की खुशखबरी मिल रही है, उसका क्या हाल होगा, सुनिएगा। ऐ मरियम अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में जी इज्जत है और वो मेरे मुकर्रबीन में से है। चलिए अमल के नुक्ते लिखिए, आज से आपने भी ये दुआ मांगनी है, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अगर औलाद है भी ना और अभी नहीं चाहिए फिर भी मांगे, अल्लाह पोते नवासियों की सूरत में दे देगा, या जो औलाद है उन्हीं के अंदर नेकी भर देगा। फिर सुबह शाम के और फर्ज नमाजों के बाद के अस्कार की पाबंदी कीजिए, क्योंकि बस सब्बिह बिलअशी वल इबकार की बात है। आज बल्कि हमेशा और हर हाल में अल्लाह की बकसरत तस्बीह कीजिए, क्योंकि वस्कुर रब्बका कसीरा, पुरानी रहनुमाई, जब आप किसी पर अल्लाह की कोई नवाजिश या नेमत देखें तो अपने लिए भी जो चाहते हैं अल्लाह से मांग लीजिए, जैसे जकरिया ने मरियम अलैहिस्सलाम पर नेमतों को देखकर अपने लिए बेटे की दुआ की और कबूल हो गई। फिर अपने बच्चों और बच्चियों के लिए बेहतरीन मानों वाले नाम रखिए। अजीबो गरीब कम्मे बेकार किस्म के नाम ना रखिए जो बिल्कीस से मिलाते हुए इबलीस रख लें। किसी ने कहा बेटी का नाम बिल्कीस था, तो बेटे का नाम काफिर इबलीस रख लो, काफी रदीफ मिलेगा। ऐसी बेकार चीजों से बचिए। अगर अल्लाह किसी बंदे को किसी अहम काम के लिए चुन ले तो उस पे फर्ज है और शुक्रगुजार हो, कम बातें करे। जैसे जकरिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा इशारों से बातें कीजिए, गौर व फिक्र के चंद बातें। जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ की तलब में लफ्ज क्या था? हब लना वहाब। वहाब कहते हैं तोहफे देने वाले को, एहसान करने वाले को, जिसके मुकाबले में बंदा कुछ नहीं देता। बच्चों की दुआएं जो है ना, उस पे अमूमन लफ्ज वहाब ही आता है। क्या पता चला कि बूढ़े माँ बाप को औलाद मिले या जवान जोड़े को औलाद मिले, मिलती अल्लाह की तरफ से तोहफे में। इसके लिए इसबाब की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, कुंवारी मरियम को दे दे और शादीशुदा औरतों को ना दे, ये अल्लाह की मर्जी है। फिर अगली बात ये है कि बीबी मरियम के पास जब जकरिया अलैहिस्सलाम खड़े थे मेहराब में, तो दुआ मांगी, अल्लाह ने उनकी बीवी का बांझपन भी दूर कर दिया और उनके बुढ़ापे को ख़त्म करके उनको साहिब औलाद कर दिया। बास कहते हैं कि अल्लाह ने उनके दिल को ईमान की ज़िंदगी से भर दिया, और बास कहते हैं वो शहीद हुए और शुहदा जिंदा होते हैं, इसलिए लफ्ज़ यहया है। ये सारी बातें तफासीर में है, इमाम बग़वी ने ये बात कही थी। लेकिन आपका मेरा काम क्या है? अल्लाह से कभी मायूस ना हो, क्या मेरे मालिक मुझे हमेशा तुझसे अच्छी से अच्छी उम्मीदें हों। फिर इसी तरह से हजरत मरियम को जो चुना गया और उनको अल्लाह ताला के सामने दुआएं मांगने का हुक्म मिला, तो मेरे आपके लिए भी अमल का यही नुक्ता है। आगे चलते हैं आयत नंबर 46 से 52। मुशरिकीन से मुबाहला, वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और उधेड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों से होगा। कहने लगी इलाही मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया। बीबी मरियम का ये जुमला आज क्रिश्चियनिटी की दीवारें गिराने वाला है, जहाँ लिविंग टुगेदर आम हो गया, जब आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे को लव चाइल्ड कहते हैं। बीबी मरियम से नस्बत जोड़ते हो, मैरी से नस्बत जोड़ते हो, और तुम्हारे घर के नस्ब का क्या हाल है, इस पे गौर कीजिएगा। फरिश्ते ने कहा इस तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है, जब कभी वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ ये कह देता है कुन, हो जा, बस वो हो जाता है। जल्दी से दुआ कर लें कि अल्लाह हमारी भी दुआओं पे कुन कह दे, बीमारियों से सेहत का कुन कह दे। आयत नंबर 48, अल्लाह ताला इसे लिखना और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ, तो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह ताला के हुक्म से मैं मादरजाद अंधे, यानी वो बच्चा जो माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ, यानी वो बच्चा जो माँ के पेट से ही देखने की नेमत से महरूम था, और कोढ़ी को अच्छा कर लेता हूँ और मुर्दे को जगा देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बास वो चीज़ें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम सब इसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने इनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? नोट कीजिए, वक्त का नबी ही क्यों ना हो, उसको भी इंसानों की जरूरत होती है, अंसारुल्लाह की। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। अमल की बातें और कुछ मजीद चीज़ें, इल्मे नाफे की दुआ कीजिए। आप देख रहे हैं सूरत आले इमरान में बार बार इल्म की बात आ रही है। हिकमत के लिए अल्लाह ताला की किताब पे गौर व फिक्र कीजिए, क्योंकि इससे हिकमत के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला की इताअत करने वालों से दोस्ती कीजिए, ताकि आपके अपने अंदर भी अल्लाह की इताअत का शौक और जज्बा पैदा हो। कुरान से रहनुमाई, दाई इल्लल्लाह वाली खूबियाँ अपनाएं, ताकि आपकी दावत में असर पैदा हो। दीन फैलाने के लिए तरबियत याफ्ता साथियों का होना ज़रूरी है। तरबियत करने के लिए अमली कोशें करने की ज़रूरत है। पहली दफ़ा कभी भी इंसान कहीं दीन का काम करे तो सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को वहाँ ज़रूरत होती है वो तरबियत याफ्ता लोग होते हैं। इससे फिर उन लोगों की और भी कदर आती है जो कि ना सिर्फ यह कि तरबियत हासिल कर चुके होते हैं बल्कि सर्व भी कर रहे होते हैं। इसी तरह औलिया अल्लाह इसलाह पसंदों की मदद करते हैं, शर पसंदों की नहीं। तो अल्लाह के दोस्त खैर फैलाते हैं, शर नहीं। गौर व फिक्र की चंद बातें। कुरान के किस्सों में अल्लाह की हिकमत है, इसलिए झूठे किस्सों को सुनने से बेहतर है कुरान के किस्से सुने जाएं। मौजज़े शरीयत बनाने वाले रब्बे ताला की ताईद से होते हैं। खुद साख्ता हराम और हलाल की ममानियत है, यानी हलाल और हराम को किसी चीज़ को करार देना ये मेरा आपका काम नहीं, अल्लाह का है। पहले खुद अमल करें, फिर दूसरों को दावत दें, और फिर खुद अमल करते ही रहें। ये नहीं कि दूसरों को बताने के बाद अपना अमल करना छोड़ दें। आगे देखिए आयत 53 से। ऐ हमारे पालने वाले महबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तो हमें गवाहों में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आयत 54 पर हमारा सुलास पूरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईसा मैं आपको पूरा पूरा लेने वाला हूँ और आपको अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और आपको काफिरों से पाक करने वाला हूँ और आपके ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ कियामत के दिन तक, फिर तुम सब का पलटना मेरी ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम तर इख्तलाफात का फैसला करूंगा। फिर काफिरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तर अजाब दूंगा और इनका कोई मददगार ना होगा, लेकिन ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला इनका सवाब पूरा पूरा देगा, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं आयते हैं और हिकमत वाली नसीहत है। अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहि सलाम की मिसाल हूबहू आदम अलैहि सलाम की मिसाल है। नोट करिए, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहने वालों के लिए इसमें एक गौर व फिक्र का नुकता कि फिर तो आदम को भी पूजो, फिर आदम को भी अल्लाह का बेटा कहो नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि उनकी तो माँ भी नहीं थी। जिसे मिट्टी से बनाकर कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक यही है, खबरदार शक करने वालों में से ना हो जाओ। इसलिए जो शख्स आपके पास इस इल्म के आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़े तो आप कह दें कि आओ हम और तुम अपने फर्जंदों को और हम और तुम अपनी औरतों को और हम तुम खास खास अपनी जानों को बुला लें, फिर हम आजी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। क्या पता चला अमल की बातें, अपने नेक आमाल के वसीले से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह को आपके नेक आमाल की ज्यादा वैल्यू होगी किसी दूसरे का वसीला देने की निस्बत। क़यामत की तफसीलात का इल्म अहदीस की रोशनी में हासिल कीजिए, क्योंकि मैंने आपने इसको नहीं देखा ना किसी इंसान ने। जिंदगी के किसी भी मामले में किसी भी मसले को समझने के लिए कुरान से मदद लीजिए, क्योंकि कुरान एवर ग्रीन है। यह हर दौर के तकाजों के मुताबिक लोगों के मसाइल को हल करता है। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह अपने दीन और नेक बंदों का मुहाफिज है, इसलिए दीन पे अमल कीजिए। नाफरमानियों के बावजूद नेमतों का मिलना मोहलत की अलामत है, इससे ढील नहीं समझना चाहिए बल्कि फौरन अपने आप को दुरुस्त कर लें। बगैर इल्म के बहस की ममानियत है, इसलिए बहसों से बचिए। गौर व फिक्र की बातें, हक की गवाही देने वालों के साथ शामिल होने की दुआ करें जैसे हवारियों ने की थी। अल्लाह ताला की तरफ से ढील इम्तिहान का तरीका है कि ये बंदा पलटता है कि नहीं पलटता। मोमिनीन के लिए दुनिया और आखिरत की खुशखबरियां हैं और अल्लाह ताला की हिकमतें अक्ल से बालातर हैं। हकीकत है कि अल्लाह ताला दिन रात वो काम करते हैं जिसको इंसान की अक्ल समझ भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आगे देखिए आयत 62 से ऑनवर्ड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आला मुकाम। यकीनन सिर्फ यही सच्चा बयान है और कोई माबूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, और बेशक गालिब और हिकमत वाला अल्लाह ताला ही है। फिर भी अगर कबूल ना करें तो अल्लाह ताला भी सही तौर पर फसादियों को जानने वाला है। कुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आप कह दीजिए कि अहले किताब ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में तुम में बराबर है, कि हम अल्लाह तआला के सिवा किसी की इबादत ना करें, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएं, ना अल्लाह तआला को छोड़कर आपस में एक दूसरे को ही रब बनाएं। बस अगर वो मुंह फेर लें तो तुम कह दो कि गवाह रहो हम तो मुसलमान हैं। अहले किताब, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इनके बाद नाजिल की गई, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? यानी अहले किताब का हर गिरोह कहता था कि इब्राहिम हमारे फिरके से थे, अल्लाह ने कहा नहीं ऐसा नहीं था। सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? और अल्लाह ताला जानता और तुम नहीं जानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो यक तरफा फोकस्ड खालिस मुसलमान थे, और वो मुशरिक भी ना थे। सब लोगों से ज्यादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नजदीक तर वो लोग हैं जिन्होंने इनका कहना माना, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीरा। कितनी बड़ी गवाही है, अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा करीब थे हजरत इब्राहिम के, अमाल में, अकायद में, तर्ज जिंदगी में। और इसके बाद, और जो लोग ईमान लाए, मोमिनों का वली और सहारा अल्लाह ही है, अहले किताब की एक जमात चाहती है कि तुम्हें गुमराह कर दें। दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। अहले किताब, तुम बावजूद कायल हो जाने के फिर भी जानते बूझते अल्लाह की आयतों का कुफर क्यों कर रहे हो? वो क्या जवाब देंगे? हमें समझ आ रहा है, अना परस्ती। बंदे का दिल मान जाता है लेकिन वो अना की वजह से जुबान से नहीं बोलता। आयात पे अमल, कुरानी वाकयात से नसीहत और इबर हासिल कीजिए। ज़राए इब्लाग यानी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दावत दीन दीजिए। आयात पे गौर व फिक्र करके इनसे बहस और मुबाहसे के बेहतरीन आदाब निकालिए। कुरान पाक से रहनुमाई। अल्लाह ताला हर चीज़ से खूब वाकिफ है, वो हर चीज़ का बदला ज़रूर देगा। अम्बिया की तबलीग हक को वाजे करती है। अमल से पहले हुक्म की सनद और दलील देख लीजिए, बगैर दलील के कोई काम ना कीजिए और ना कुछ छोड़िए। गौर व फिक्र की बातें, शरई बुनियाद और सनद के जाने बगैर इमाम का कौल भी नाकाबिले कबूल है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बात, यही हमारे लिए हुज्जत है। मुखालिफिन से दलील और हुज्जत से बात कीजिए। तारीख के इल्म के हसूल की हौसला अफजाई की जाएगी। अहले किताब मोमिनों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, ऐसे लोगों से केयरफुल रहने की जरूरत है। आगे थी आयत 71 से अहले किताब का ईमान, कुछ साजिशें हैं इसमें। अहले किताब, बावजूद जानने के हक को बातिल को क्यों मिला जुला रहे हो और क्यों हक को छुपा रहे हो? ये उनके उलमा के जराइम थे। आज भी जो इल्म के नाम पे ये खयानत करेगा उन्हीं में शामिल होगा। वकालत ताइफतु मिन अहलिल किताब यामिनु बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनु वज्हन नहार। और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों पर उतारा गया है, इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्त काफिर बन जाओ, ताकि ये लोग भी पलट जाएं। और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी का यकीन न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इस बात का भी यकीन न करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसा तुम दिए गए हो, या ये कि ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे इसे दे, अल्लाह ताला वसत वाला और जानने वाला है। यख्तसु बिरहमति ही मैं यशा, अपनी रहमत के साथ वो जिसे चाहे खास कर ले, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ खास कर ले और हमें अपना फजल अता फरमाए। बस अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तो खजाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दें, और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि अगर तूने एक दीनार भी अमानत दे दे तो तुझे अदा न करें। हाँ, ये और बात है कि तू इसके सर पर ही खड़ा रहे, ये इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम पर इन जाहिलों के हक का कोई गुनाह नहीं। गैर यहूद के लिए जुमला बोलते थे ये लोग, बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ कहते हैं। यदि वो कहते थे गैर यहूद का माल, जमीनें, सब हमारी, पूरी दुनिया में जिससे जो मर्जी ले लें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बात कहाँ लिखी हुई है, हमें दिखा दो। क्यों नहीं, मुआवजा होगा। बल्कि जो शख्स अपना करार पूरा करे और परहेजगारी करे तो अल्लाह ताला भी ऐसे परहेजगारों से मोहब्बत करता है, यानी ये उनकी गलत फहमी है, उसका इजाला किया गया। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ना तो इनसे बातचीत करेगा और ना इनकी तरफ क्यामत के दिन देखेगा और ना इन्हें पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। देखिए कुरान पढ़ें तो आंखें खुलती हैं ना, सब खुशफहमियाँ दूर हो जाती हैं, और यही पढ़ना शैतान मुश्किल कर देता। आयात पर अमल, अल्लाह की रहमत और इसके फजल की दुआएं करें। मुखालिफ की बात गौर से सुने और इसकी सच्ची बात है तो कबूल कीजिए। अगर आपके पास किसी की अमानत है तो हकदार तक इसका हक पहुंचाएं। आज किचन को देखिएगा, किसी का डब्बा, किसी की प्लेट तो नहीं जो आपके बर्तनों में मिल गई, फौरन वापस करवाइए या फिर उनसे माफ कराइए। छोटी छोटी चीजें होती हैं। कुरान से रहनुमाई, मुखालफीन के साथ भी इंसाफ कीजिए। तकब्बुर और दूसरों को हकीर समझना लोगों के माल को नाजायज तौर पर खाने का सबब बनता है। अल्लाह की कसम को अपनी खरीदो फरोख्त बढ़ाने और फायदों का जरिया ना बनाइए। गौर व फिक्र की बातें, अहले इल्म की जिम्मेदारी क्या है? हक को बातिल से अलग करें, गलत वलत ना करें, लोग तो पहले ही कन्फ्यूज होते हैं। अहले किताब का मुस्लिम उम्मत से हसद हक को कबूल करने में रुकावट है। यहूद हर उस शख्स पर जुल्म करना हलाल समझते थे जो इनके दीन से अलग और मुखालिफ हो। देखिए कितनी बड़ी गुमराही थी जो शुरू से लेके आज तक आपको दिखती है। अहद व पैमान पूरा करना तकवा का हिस्सा है, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आगे आयत 78 से 83, अहले किताब का ईमान। यकीनन इनमें एक ऐसा गिरोह है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जुबान मरोड़ता है ताकि तुम इसे किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं, और ये कहते भी हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से है, हालांकि दरअसल वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं। वो तो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला किताबों हिकमत और नबूवत दे, ये लायक ही नहीं कि फिर भी वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा क्या, कूनू रब्बानीशीन, तुम सब रब के हो जाओ। ये क्राइटेरियन है। किसी की भी बात सुन के अगर आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं ना तो उसको सुनते रहिए, और अगर किसी की बात सुन के अल्लाह से दूर हैं, गुनाहों से करीब हैं और उस बंदे के गर्विदा हो रहे हैं तो गड़बड़ है। शख्सियत परस्ती को छोड़कर खुदा परस्ती पे आ जाइए, अल्लाह ताला की तरफ अपने आप को जोड़िए। तुम्हारे किताब सिखाने के बायस और तुम्हारे किताब पढ़ने के सबब, और ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों पर रब बना लेने का हुक्म करे, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? क्या पता चला कि शख्सियत परस्ती बंदे को कुफर तक ले जाती है। आज जितना भी बिगाड़ है मुख्तलिफ फिरकों में, उसमें मेन वजह शख्सियत परस्ती है। जब अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताबों हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ को सच बताए, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और इसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि क्या तुम इसके इकरारी हो और इस पर मेरा जिम्मा ले रहे हो? सब ने कहा हमें इकरार है। फरमाया तुम अब गवाह रहो और खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, बस इसके बाद जो पलट जाए वो यकीनन पूरे नाफरमान है। इसका नंबर नोट कर लें, आयत नंबर 81, 82, सूरत आल इमरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अहद है, और सूरत अल अराफ में आप अल्लाह की वहदानियत का इकरार पढ़ेंगे, अलस्तु बिरब्बिकुम। वो पूरी इंसानियत से लिया था, ये अंबिया से लिया था। ये वो आयतें जिसकी वजह से आज के और क्यामत तक के हर गैर मुस्लिम को नबी सल्लम को मानना मस्ट है, लाजिम है। इसीलिए यहूद और नसारा की निजात किसमें कि वो इस्लाम को कबूल करें। आयत 83 में अब इस्लाम की खूबी, क्या वो अल्लाह ताला के दीन के सिवा और दीन की तलाश में है? हालांकि तमाम आसमानों वाले और सब जमीन वाले अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, खुशी से हों या ना खुशी से, सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे, तो वापसी को याद करो। आयात पर अमल, वुजू के लिए अमली तरबियत का एहतमाम करें। किसी भी सीखे हुए इल्म पर अमल करने से इल्म पुख्ता होता है, इसलिए पुख्तगी हासिल करें। दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर शामिल हों। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह के नाम पर झूठ बांधना यहूद का शेवा है, हमने इससे बचना है। दाई और उस्ताद को हमेशा अल्लाह की तरफ दावत देनी है, अपनी तरफ नहीं। आलिम और दाई अपने इल्म पर अमल करे और बड़े उमूर से पहले छोटी बातें सिखाए, यानी इल्म का सफर भी तदरीज मांगता है। गौर व फिक्र की बातें, दो तरह की यहाँ खियानतें खुली हैं। तहरीफ, बातों को बदलना, एक अल्फाज में तहरीफ, ऐसे जैसे मैं भी तर्जमा पढ़ रही हूँ तो अल्लाह ना करे तर्जमा ही बदल दूँ। दूसरी मानी में तहरीफ, और वो कैसे, एक तो टोन चेंज कर लेना, कोई बात कहना अपनी तरफ से लगे कि ये तर्जमे में आ गई, या फिर मानी ही बदल दिया जाए। ऐसी सारी ख्यानतों से बचना। रब की ताबेदारी करने वालों का जिक्र आया हो, और इल्म और बसीरत वाले ही आखिर में रब्बानी बनेंगे। यहाँ मैं आपको दावत दूंगी कि हमारी एक सीरीज है रब्बानियत, बहुत ही स्पिरिचुअल लेक्चर है, एक एक सफ़े की छोटी छोटी, यानी मीन 15-20 मिनट का भी एक टॉपिक है, कुछ इस तरह आगे बढ़ते हैं, उसको सुनिए। अगर आपको लगता है ना आपको अल्लाह से दूरी लग रही है, कुर्ब नहीं मिल रहा, तो आप सुनिए, यूट्यूब पे मौजूद है ये सीरीज, आप ढूंढ सकते हैं उधर से। इसी तरह पढ़ने का फायदा इल्म, इल्म का फायदा अमल, ये जुमला जरूर लिखिएगा। आगे आयत 84 से 91, अहले किताब की बातें। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया, और जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल, इसहाक, याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद पर उतारा गया, और जो मूसा और ईसा और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से उतारा गया, इन सब पर ईमान लाए, ये होते हैं खुले दिल के लोग। हम इनमें से किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मुस्लिम। इसलिए फरमाया, जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करेगा, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा, वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। अब अगली आयत को सुनिए, सिराज मुनीरा, इस पारे के अंदर इस पे गौर कीजिएगा। रसूल की इताअत छोड़ने वालों को यहाँ कहा जा रहा है, अल्लाह ताला इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो ईमान लाने और रसूल की सच्चाई की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को हिदायत नहीं देता। ये नाम निहाद मुसलमानों की बातें, जो कहते हैं हदीस कोई नहीं सही होती, सुन्नतों पे अमल की क्या ज़रूरत है। अब वो अपने नाम के साथ जितने मर्जी नबियों के नाम जोड़ के लिख लें, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो इस्लाम से निकल गए। तो हुज्जियत हदीस, नबी की बात, नबी की सुन्नतें, हदीसें, असल दीन तो ये है, ढांचा है, ये एक स्केल्टन है। हदीस को निकाल दें, सुन्नतों को निकाल दें, तो सब मलबा रह जाएगा। आपको तो नमाज का तरीका भी कुरान से नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए जो दीन को या अल्लाह के नबी की हदीस को ना माने, क्या सजा है? आयत 87, इनकी तो बस यही सजा है कि इन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा, ना इन्हें मोहलत दी जाएगी, मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफर करें, फिर कुफर में बढ़ जाएं, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल ना की जाएगी, हरगिज़ हरगिज़ कबूल ना की जाएगी। सोचिए, यही गुमराह लोग हैं। हाँ, जो लोग कुफर करें और मरते दम तक काफिर रहें, इनमें से कोई अगर ज़मीन भर सोना दे, गो फिदिये में ही हो, तो भी हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब है, जिनका कोई मददगार नहीं। इतनी बड़ी बात है, आज इस दुनिया में जो करना है कर लो, कल बड़े बड़े अमल करना चाहोगे, कुछ कबूल नहीं होंगे। तो आयात पे अमल क्या है कि हर मुमकिन तरीके से दीन को आम कीजिए, दीन की दावत दीजिए, प्यार से, मोहब्बत से, घरों में जाके, सोशल मीडिया के जरिए। फिर इसी तरह वाहदतुल अदियान के कायल लोगों की हिदायत की दुआ करें और उनकी इसलाह करें। वो कहते सब दीन एक ही हैं, जैसे दीन इलाही के नाम पे अकबर बादशाह ने खड़ा किया था। आज भी लोग चाहते हैं सारे मजहबों को जमा करके ब्लेंडर में डाल के स्मूदी बनाए, सबको पिला दें। तो याद रखिए, इस्लाम इसका कायल नहीं है। और अल्लाह ताला से मगफरत पाने के लिए बकसरत सदका दें। कुरान पाक से रहनुमाई, दीन सिर्फ इस्लाम है जिसे अल्लाह बंदे से कबूल करता है। हुकूमत जो नोट इशू करती है ना, वही कबूल करती है। नकली नोट और जाली नोट का असली नोट से क्या फर्क है? गवर्नमेंट से इशू नहीं होता। तो दीन और इस्लाम अल्लाह या रसूल की तरफ से आएगा तो कबूल होगा। किसी भी गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, ख्वाह वो गुनाहों में कितना ही आगे बढ़ चुका हो। अगर तौबा के बाद इस्लाह और दावत का काम हो तो बहुत बेहतर है। गौर की बात है, दीन की कबूलियत इसी वक्त हो सकती है जब दिल की तस्दीक और यकीन के साथ जाहरी अमल भी हो। हिदायत के तालिब के लिए असबाब और रास्ते आसान हो जाते हैं। अल्लाह कभी किसी को भटकने नहीं देता। दीन इस्लाम की सच्चाई जानने के बाद शिर्क की तरफ जाना कुफर है। क़यामत के दिन हर तरह का फदिया बेफायदा होगा, वहाँ कबूल नहीं होगा। तो आज जो करना है कर ले, और आपका मेरा अमल इस दीन को आम कीजिए। आखिर में मतरूक सुन्नत दुरूद दिल में पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इतना प्यारा नबी जो हमें छोटी छोटी बातें सिखा गए। आज वो सुन्नत जिस पे अमूमन लोग अमल नहीं करते, वो है अजान और इकामत के कलेमात का जवाब देना। बातें चल रही, टीवी चल रहे, हंसी मजाक, अजान भी सुन रहे होते लेकिन जवाब नहीं देते। हालांकि हुक्म क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहता है तो तुम में से हर आदमी अल्लाह अकबर कहे, फिर जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फिर जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो, फिर जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहिए, फिर जब वो हय्या अलल फलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। बस लोग पूछते हैं क्यों, पीछे तो एक ही था यहाँ क्यों? तो देखिए, हय्या अलल फलाह के नेकी की तरफ आओ, दावत है ना। तो आप आगे से कहते हैं, अल्लाह के सिवा नेकियों की तरफ ले जाने की कुव्वत किसी की नहीं, मतलब यह है कि अल्लाह चाहेगा तो मैं ये नेकी करूँगा। फिर जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, बीच में हय्या अलल फलाह के साथ हय्या अलल सलाह पे भी ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहने की बात है। जो ये करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 385। अल्लाह ताला हम सबको इन मुर्दा सुन्नतों को जिंदा करके सुन्नतों को आम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था पारा, अल्लाह करे कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। जज़ाकुम अल्लाह खैर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।